यानी ऐसा समझ लो कि घनांगुलस्य असंख्यात भाग मात्रोपि उपर्य उपरि सोपि तत्संख्यात गुणों भवति द्विन्द्रियादि पर्याप्तकस्य जगन्यावगाह। दे दिया उसमें, कितना दिया है? 6/7। ये सब मतलब उसके चिन्ह है, समझ लो। अब त्रिन्द्रिय पर्याप्तकों का जगन्य अवगाह 6/7 गुणित असंख्यात, ये असंख्यात का चिन्ह बना है। फिर चौरिंद्रिय पर्याप्तक का जगन्य शरीर 6/7 डबल असंख्यात। फिर पंचेंद्रिय पर्याप्तक का जगन्य शरीर 6/7 असंख्यात को 3 बार कर दिया। अपर्याप्त द्विन्द्रियादीनाम उत्कृष्ट शरीर अवगाह जगन्यतः किंचित किंचित अधिक क्रमो ज्ञातव्य है। अपर्याप्तक जो द्विन्द्रिय जीवों का उत्कृष्ट शरीर अवगाह था, वो जगन्य से कुछ कुछ अधिक जान लेना चाहिए। अनुद्धरी यम कुंथो मच्छी काणाय सालिसित्थोय पज्जत्तान तसाणम जहन्न देहो वनिदिट्ठु। अब त्रस जीवों के जो जगन्य शरीर है उनका परिमाण दिखा रहे हैं। अनुद्धरी किसमें होता है वो जगन्य शरीर? तो बोले अनुद्धरी। अनुद्धरी कौन सा प्राणी है? दो इंद्रिय जीव है। सबसे छोटा द्विंद्रिय जीव ये अनुद्धरी है। अनुद्धरी कुंतु से भी सूक्ष्म जीव होता है वो, दो इंद्रिय वाला। और 3 इंद्रिय जीवों में कुंतु जीव है। कुंतु नाम का एक जीव होता है, बहुत छोटा होता है। वैसे बुंदेलखंड में कुथुआ बोलते हैं, जो टोकरियां होती है ना बांस की, उन टोकनियों में छोटे छोटे सफेद जीव हो जाते हैं, उसको वो लोग कुथुआ बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो उसकी अवगाहना बहुत बारीक बताई ना, कितनी बारीक बताई, मतलब अंगुल के असंख्यात विभाग। फिर चतुरेंद्री जीवों में काणा मच्छी, काण मक्षिका सबसे छोटी होती है। और पंचेंद्रियों में सालिसित्थु, शालिसिक्थ माने शाली चावल जो होता है ना उतना बड़ा है, इतनी छोटी एक मछली होती है उसके कान में रहती है राघव मच्छी के वो। तो पज्जत्ताण, ये पर्याप्तक त्रसों की बात हो गई। इनके जगन्य शरीर इस प्रकार से निर्दिष्ट है, कहे गए हैं। लोय पमाणो जीवो देह पमाणु भी अच्छदे खेते उगाहण सत्तिदु संहरण विसप्पदम मादु। अब देखो, जीव अपने क्षेत्र में जब रहता है तो अगर पूरा फैल जाए, उगाहण सत्तिदु संहरण विसप्पदम मादु, संकोच विस्तार स्वभाव के कारण और अवगाहन शक्ति के माध्यम से जीवो लोय प्रमाणों, लोक प्रमाण भी बन सकता है। कब बनता है लोक प्रमाण? सिर्फ एक समय के लिए, न आगे कभी न पीछे कभी। जब समुद्घात करते हैं केवली भगवान तो लोक पूर्ण करते हैं, जिस समय उस समय लोक प्रमाण बन जाता है। लेकिन यहां पर दूसरी विवक्षा कि लोक प्रमाण जो जीव है, यानी प्रदेश की अपेक्षा से जीव के प्रदेशों की गिनती करो तो फिर लोकाकाश में जितने प्रदेश होते हैं ठीक उतने ही प्रदेश एक जीव में होते हैं। तो उतना बड़ा जीव होते हुए भी देह प्रमाणों भी अच्छे थे, शरीर के बराबर होकर के भी रह जाता है। कैसे? इतना बड़ा लोकाकाश और फिर इतने छोटे से शरीर में कैसे रह रहा है वो जीव? तो फिर उसमें कह रहे हैं उगाहण शक्ति दो, उसमें अवगाहित होने की शक्ति है। और संघरण विसप्प धम्मा दो, संकोच विस्तार उसका स्वभाव है, इसलिए वो अपने उस धर्म के कारण, संकोच विस्तार स्वभाव के कारण, नाम कर्म के सहयोग से, ये याद रखना साथ में, नाम कर्म के सहयोग से। स्वभाव तो क्या क्या नहीं, मतलब जीव के पास तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन नाम कर्म के निमित्त से वो शक्ति प्रकट होती है, संकोच विस्तार की शक्ति। वरना नहीं तो मोक्ष जाने के बाद ऐसे फैल नहीं जाता जीव कि भाई शरीर से छूट गया तो अब तो पूरा फैल जाना चाहिए, ऐसा नहीं। वो जैसा आकार रहा शरीर का वो अंतिम आकार वैसा ही रहता है, कुछ कम होता है, वो कम भी पहले हो जाता है, मुक्ति के पहले ही वो आकार कम हो जाता है आत्मा का। पश्चिम स्कंद नाम का एक प्रकरण आता है द्वादशांग जिनवाणी में, और उसका कुछ हल्का सा चित्रण जय धवला के अंत में है, और वहां पर ये खुलासा किया है कि वो कैसा, मतलब संकोच होता है उसका शरीर आकार जो होता है जीव का कैसे संकुचित होता है, तो उतना कम हो जाता है, मतलब अंतिम शरीर से कुछ कम रह जाता है, ये उसका वर्णन है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जो नासिका के अंदर जो वायु जाने का स्थान है, और अपने पेट के अंदर भी जो खोल वाला हिस्सा है, और कान के अंदर भी जो नलियां हैं जिसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है, तो ये जो खोखले स्थान है वो पूरे उस समय पैक हो जाते होंगे, और फिर वो जीव घनाकार हो जाता होगा, तो उतना कम हो जाता आकार। लेकिन इसमें ये बात याद रखना कि घनाकार होते हुए भी ये हिस्सा जहां पर वायु नहीं है वो ऐसे पिचक जाएगा ना, अगर आप दबा दोगे तो अंदर। देखो फुग्गा है, अंदर हवा है तो फूला हुआ है, हवा निकाल दो तो ऐसे पिचक जाता है कि नहीं? तो क्या सिद्ध भगवान का आकार इस प्रकार रहेगा क्या, पिचका हुआ? अब इसका उत्तर कैसे दें बिना जाने, तो ऐसा नहीं होता। वो आकार सर्वांग सुंदर रहता है, अंतिम समय नाम कर्म का जब तक उदय है तब तक वो आकार उस नाम कर्म के निमित्त से वैसा बन जाएगा, लेकिन बस ये है कि अंदर कोई पोला स्थान नहीं रह जाएगा और वो छोटा हो जाएगा आकार थोड़ा सा, क्योंकि पोले स्थान निकल जाने के कारण। फिर भी उसको जीव को तो ठोस ही रहना है उसमें, अंदर प्रदेशों में कोई ऐसा गैप नहीं रहना है, तो फिर वो संकुचित होगा। तो किंचून मतलब कुछ कम अंतिम शरीर के बराबर होता है। हाँ, अब अन्य मतियों ने जो कल्पनाएं की है जीवों के बारे में उसका बहुत सुंदर खुलासा करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है वो आप जैन आगम से समझो। बाकी बहुत सारे मत है दुनिया में, सबने अपने अपने हिसाब से जीवों के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं की, सबने की है। इस्लाम मजहब में उसको रूह बोलते हैं, और ईसाई लोग उसको सोल बोलते हैं, और वेदांती उसको आत्मा कहते हैं, जैनी लोग जीव कहते हैं। ऐसे अलग अलग सबके अपने अपने मान्यता है, मान्यता सबके यहाँ पर है, और हिंदुस्तान के अधिकांश दर्शन जीव और शरीर को भिन्न मानते हैं। तो जीव और शरीर को भिन्न मानने मात्र से आप सम्यक दृष्टि नहीं होगे, ये बहुत महत्व की बात बता रहे हैं हम। जीव और शरीर को भिन्न जानने मात्र से या मानने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। जीव का स्वरूप क्या है और शरीर का स्वरूप क्या है, इन दोनों को स्वरूप की अपेक्षा से भिन्न जानकर जो भेद ज्ञान होता है वो सम्यक दृष्टि का ज्ञान कहलाता है। जीव और शरीर को कौन नहीं जानता है? आप देखो किसी से भी पूछ लो, आप किसी भी मंदिर में जाकर के, हिंदू मंदिर में, नहीं नहीं आत्मा तो अलग है, नयनं छिंदन्ति शस्त्राणि, गीता के श्लोक सुना देंगे लोग आपको, और भी बहुत सारे श्लोक है गीता में, एक श्लोक नहीं है आत्मा के बारे में, बहुत से श्लोक हैं। जैसे कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही शरीर छोड़कर नए शरीर ग्रहण कर लेता है जीव, ऐसे श्लोक समाधि तंत्र में भी आते हैं, बहुत सारे श्लोक गीता में और समाधि तंत्र में एक जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन नहीं, उससे भी गहरा जाना पड़ता है अंदर गहराई में, तब जा करके सही पकड़ में आता है जीव। उसके बारे में आगे बढ़ने में।